أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کلام جدید میں ہماری بحث الحاد کے موضوع میں چل رہی تھی اور پچھلے درس میں ایک اہم سوال آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو معمولاً رائج ہے آج کے اس جدید دور میں، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی یہ سوال جو ہے، یہ اعتراض کہہ لیں، چاہے سوال کہہ لیں، چاہے فکر کہہ لیں، یہ موجود تھی. تو وہ یہ تھا کہ خداوند متعال اس کائنات کا خالق ہے، خلقت کے اندر تو یہ مخلوقات، یہ کائنات محتاج ہے خدا کی، لیکن اپنی بقا میں، اپنے تسلسل میں، اپنے نظام میں، مدیریت و مینجمنٹ میں اس میں ضرورت نہیں ہے. کہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں کیا یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، کھول کر بیان کیا تھا. اس کے جواب میں ایک مطلب جو ہے وہ بیان کرنے کی جو ضرورت تھی، جو کل شروع بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس مسئلے کا جواب ربط رکھتا ہے ایک اور مسئلے کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ کائنات یا مخلوقات خالق کی جو محتاج ہیں، یہ احتیاج کس چیز میں ہے، ملا کے احتیاج کیا ہے. مثلا آپ اگر فلسفہ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جب علت کی بحث شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک یہی مسئلہ پھر پیش آتا ہے کہ اگر اس کائنات میں علت و معلول کا نظام حاکم ہے، جو کہ ہے، تو پھر معلول اگر علت کا محتاج ہے تو احتیاج کس چیز میں ہے. یہاں پر بھی مختلف نظریے تھے، اور یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے حتماً. میں چاہوں گا اصطلاحات کو سہل زبان میں بیان کروں تاکہ مطلب جو ہے وہ سب کے لیے عام فہم ہو جائے، اور اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو خود بخود یہ جو ایک یوں کہہ لیں نظریہ موجود ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا. معلول علت کا محتاج ہے. اب ہم یہ کہاں بحث کر رہے ہیں، ہمارا فرض کیا ہے، اس کو حتماً ذہن میں رکھیں. کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ہماری بحث اب کس فرض میں چل رہی ہے، کہ خالق ہے. چونکہ جو خالق کے منکر تھے ان کے بارے میں مختصر گفتگو ہو گئی ہے ہماری، اور ان کے بعض اساسی مبانی کا جواب مختصر طور پہ بیان کر دیا ہے، اور بعد میں بھی بیان کیا جائے گا. لیکن یہ مسئلہ بھی چونکہ رائج ہے بہت زیادہ، اور ہم نے جب الحاد کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا تھا تو اس میں ایک کیٹاگری جو الحاد کی بنتی تھی وہ یہی تھی کہ ربوبیت الہی کا انکار کر دینا، خدا کے کسی بھی نقش و کردار کا قائل نہ ہونا خلقت کے بعد، یہ الحاد کی ایک قسم تھی. اور آج یہ آپ کہہ لیں کہ سائنسی دنیا کے اندر رائج بھی ہے فکر، تو لہذا ضرورت تھی کہ اس کو کھولا جائے. تو اب یہ بات تو واضح ہے کہ کائنات جو ہے وہ محتاج ہے غیر کی، اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے، کیونکہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بھی عاقل انسان اس کو قبول نہیں کرتا. اگرچہ بعض افراد، بعض سائنسدان جو کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ اس فکر کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں آئی ہے، لیکن وہ آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکے. مثلا جیسے آپ دیکھ لیں کہ بگ بینگ کا نظریہ جیسے سامنے آیا، کہا بس اب خدا کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کائنات کیسے وجود میں آئی ہے. خوب، آپ کو پتہ چلا ہے کہ بعد میں، بگ بینگ کے بعد کی حالت کیسے وجود میں آئی ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کی کیا حالت تھی، اس کو آپ کہاں سے تحلیل کریں گے؟ इसका तो अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, और ना साइंस ये जवाब दे सकती है, क्योंकि पहले अर्ज किया था कि साइंस क्यों का जवाब नहीं देती है, कैफियत का जवाब देती है। मसलन बिग बैंग, कायनात कैसे वजूद में आई है, इसका तो जवाब देगी साइंस, लेकिन क्यों वजूद में आई है ये साइंस कभी जवाब नहीं दे सकती। और सब साइंसदान इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि कैसे वजूद में आई, ये हमारा मौजू है और बयान भी कर रहे हैं। वो बार बार इस बात का तज़क्कुर दिया जा रहा है कि अगर माहिर साइंसदान अपनी महारत को बरोकार लाकर एक नज़रिया देता है और वो नज़रिया ठीक भी हो तो दीन उसको कबूल करता है, और जो बाज दीन से वाबस्ता अफराद इन नज़रियात का इनकार करते हैं, हम उनके मुखालिफ हैं। मकतबे तशय्यो के अंदर जो है वो किसी किस्म की शिद्दत पसंदी नहीं पाई जाती है नज़रियात के निस्बत, फ़कत ये है कि उन उसूल और मबानी के तहत वो साबित हो कि जो उस इल्म के अंदर मुसल्लम हैं और होने चाहिए उसके अंदर, उसकी बुनियाद पर वो साबित हो, ना ये कि वो शरायत अभी पूरे नहीं हुए हैं, नज़रिया अभी जो है वो कतईयत की मंजिल पे नहीं पहुंचा है और एक कतई नज़रिए के तौर पे जो है वो पेश कर दिया जाए, फिर उसके ज़रिए दूसरे नज़रियात को रद्द कर दिया जाए, इस बात को कबूल नहीं करते। बात वाज़ह। बस एक फ़र्ज़ हमारा इस मसले में ये है कि कायनात जो है वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है, हतमन इसका कोई खालिक है जो कि खुदावंद मुताल है। अब यहां से हमारा मसला शुरू होता है कि अगर कायनात खालिक की मोहताज है तो ये एहतियाज किस चीज में है। ज़बान हाल बयान करते हैं कायनात का, वाइल्ला हकीकत ऐसे नहीं है, फकत एक तहलील की जा रही है, मतलब को समझने के लिए ज़रूरत है कि इसी तरीके से बयान किया जाए, वाइल्ला अल्फाज नहीं है, अल्फाज की कमियों की वजह से यह बयान किया जा रहा है। मसलन कायनात कहती है चूंकि मैं मअदूम हूं और मुझे वजूद में आना है लिहाजा खालिक की ज़रूरत है। मसलन अगर उसकी ज़बान ये हो, दुरुस्त है, और बार बार तज़क्कुर दे रहा हूँ इसको ताकि, चूंकि ज़ाहिर सी बात है कि बाज़ अफराद मुमकिन है कि ये समझने लग जाएं कि कायनात जो है वो मादूम होने से की हालत में कुछ थी, मसलन इस तरह की बातें हो रही हैं ना, ये समझाने के लिए है कि चूंकि जो तहलीली गुफ्तगू होती है अल्फाज वहाँ पर जो हमारे उर्फी अल्फाज हैं वो कम हैं, उनको नहीं समझा पाते, तो इस तरीके से फिर उनको तमसीली तौर पर बयान किया जाता है कि कायनात गोया कि यूँ कह रही है, अगर यूँ कह रही है कि मैं चूंकि मादूम हूं और मौजूद होना चाहती हूं लिहाजा मुझे खालिक की ज़रूरत है, अगर ये कहे तो फिर जो साइंसदान नज़रिया रखते हैं वो उनका ठीक है, दुरुस्त है, फिर वो ठीक बात बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कायनात जो है वो मोहताज थी मौजूद होने में कि मुझे मौजूद कर दिया जाए, मैं खुद ब खुद तो मौजूद नहीं हो सकती, लिहाजा कोई गैर मुझे क्या है मौजूद करेगा, लिहाजा जो है वो गैर का तरफ मोहताज है, इल्लत का मोहताज है, खालिक की मोहताज है, अगर ये कहा जाए तो फिर तो साइंसदान की बात दुरुस्त है, या मोतज़िला ने जो बात कही थी या बाज़ मुतकल्लमीन जो कहते थे उनकी बात दुरुस्त बनती है, नज़रिया ठीक बनता है वो उनका। लेकिन हकीकत हाल ये है कि दुरुस्त नज़रिया ये है कि कायनात इस वजह से खुदा की मोहताज नहीं है कि वो मौजूद होना चाहती है, मादूम है और मौजूद होना चाहती है, बल्कि कायनात मखलूकात जो भी चीज़ है वो इल्लत की मोहताज है, इसलिए चूंकि वो मुमकिनुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद है लिहाजा गैर की जरूरत है। यानी गोया के जबान हाल में हर मखलूक ये कह रही है कि मैं मोहताज हूं गैर का, मैं मोहताज हूं खालिक का, मैं मोहताज हूं इल्लत का, क्यों? क्योंकि मैं मुमकिन हूं, क्योंकि मैं मुमकिन हूं, और ये इम्कान की हालत उसकी कभी भी खत्म नहीं होती, हत्ता वो वजूद में ना भी आए तब भी वो मुमकिन है, अगर वो वजूद में आ जाए तब भी वो मुमकिन है। बस अगर इसने इस मिलाक के तहत हम चलते हैं तो इस मिलाक के तहत जिस तरीके से हमें और मखलूकात को, इस कायनात को खुदा की ज़रूरत है, इल्लत की ज़रूरत है अपने वजूद के अंदर, अपने वजूद में आने के लिए, इसी तरीके से हमें अपनी बका और इस्तेमरार में भी गैर की ज़रूरत है। बात वाज़े, असल मसला वाज़े हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी और वजाहत करना चाहूंगा, मसला वाज़े हो जाए कि यह मुमकिन किस बला का नाम है। हादिस होने को तो मैंने सादा जबान से बयान कर दिया है, अगरचे ये भी बात जहन के अंदर रखें कि इल्मी गुफ्तगू को जब आप अवामी सतह पर लेकर आते हैं तो बहुत सारे मतालिब सतही हालत में तसामुह हो जाता है, उनमें दिक्कतें बाकी नहीं रहती हैं, लेकिन अपने जहन को करीब करने के लिए, मतलब को समझने के लिए हमें जो है वो उनसे इस्तेफादा करना पड़ता है ताकि हर इंसान जो है वो समझ जाए। लेकिन जब इल्मी ज़बान में गुफ्तगू हो जाएगी तो फिर खुद ब खुद जो है वो मतलब दकीक हो जाएगा और मतलब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, मुमकिन कैसे कहते हैं? बहुत सादा ज़बान इस्तेमाल करूंगा। अगर हम अपनी जिंदगी में गौर करें, हम मुख्तलिफ सादा सादा अगर मिसालें लें तो मतलब वाज़े हो जाता है। मसलन मिसाल के तौर पे, अगर आप घर जाते हैं और आप पानी का, पीने का पानी मांगते हैं अपने घर वालों से, और पानी पीकर आप कहते हैं ये नमकीन है, और फिर आपसे पूछा जाए कि ये पानी क्यों नमकीन है, तो क्या जवाब देंगे? चूंकि नमक इसमें डाल दिया गया है, नमकीनी इसमें मौजूद है, लिहाजा पानी नमकीन है। खाने में अगर नमक मौजूद हो तो कहते हैं कि ये क्या है, नमकीन है। सवाल अगर पूछ लिया जाए खाना क्यों नमकीन है तो जवाब दिया जाता है, सवाल जो है माकूल शुमार किया जाता है, कहते हैं कि चूंकि नमक नमक है इसमें लिहाजा नमकीन है। बात वाज़े, लेकिन आया कोई इंसान ये सवाल कर सकता है कि नमक क्यों नमकीन है? जी जाती है उसका, यानी तो हर बच्चा जो है वो आप उसको समझा दें, थोड़ा सा शऊर रखने वाला हो, वो भी आपसे सवाल नहीं करेगा कि नमक नमकीन क्यों होता है, क्योंकि नमक कहते ही उसको है जिसकी जात में नमकीनी पाई जाए। बस आपने देखा कि अगर किसी के अंदर नमकीनी अपनी जात में ना हो, उसकी जात नमकीनी से खाली हो और उसमें कहीं से भी नमक आ जाए, नमकीनी आ जाए, तो सवाल उठता है कि क्यों नमकीन है ये। अंदाज़े, लेकिन जब नमक आपके सामने पड़ा होता है और आप चखते हैं तो कोई भी ये नहीं कहता कि यार ये नमक नमकीन क्यों है, समझ में नहीं आ रही कि ये नमक नमकीन क्यों हो गया है। रुस्त है, खाने के बारे में कहेंगे कि पता नहीं ये नमकीन क्यों हो गया है, पता नहीं ये पानी जो है वो नमकीन क्यों हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि पानी की जात में नमकीनी नहीं है, खाने की जात में नमकीनी नहीं है। अगर इसके अंदर नमकीनी आनी है तो कहीं बाहर से आनी है, किसी गैर ने देनी है, लेकिन नमक की अपनी जाती है। इसी तरीके से आप दूसरी मिसालें ले लें, कपड़ा आपका गीला हो जाता है, सवाल करते हैं आप मेरा कपड़ा क्यों गीला हुआ है, कहते हैं इसके ऊपर पानी गिर गया है। फर्श गीला हो जाता है, सवाल करते हैं क्यों गीला हुआ है, पानी गिरा है इसके अंदर, लेकिन कभी पानी के बारे में सवाल किया पानी क्यों गीला है? यानी आपने कभी सोचा भी है कि मैं सवाल करूं कि पानी क्यों गीला होता है? पानी की गीला होना उसकी अपनी जात में शामिल है, पानी कहते ही उसको हैं कि जो अपने साथ वो पानी वाली खसूसियात रखता है। मतवाजे, बस आपने देखा कि अगर कोई जात अपने अंदर कोई चीज ना रखती हो और वो चीज उसमें आ जाए तो सवाल होता है कि ये क्यों है। बात वाज़े, जब यहां तक बात समझ में आ गई तो अब एक जो है मतलब वाज़े हो गया कि हमारे पास बाज़ ऐसे हकायक़ हैं, बाज़ ऐसे वजूद हैं कि जिनकी बाज़ सिफात अपनी नहीं हैं, और बाज़ वजूद ऐसे हैं कि जिनकी सिफात क्या हैं, अपनी हैं। दुरुस्त है? ये अभी हम मखलूकात के अंदर बहस कर रहे हैं, बरवाज़े ये तो हम बिलविजदान दर कर रहे हैं, हर कोई इंसान दर कर रहा है। अब अगर मैं इस सादा जबान को इस्तिलाही जबान देना चाहूं तो यूं कहूंगा कि वो मौजूद कि जिसकी सिफात अपनी ना हो, वो उस सिफात की निस्बत मुमकिनुल वजूद कहलाता है, मुमकिन कहते हैं उसको। मसलन खाने के अंदर ये सलाहियत है कि उसमें नमक डालो तो नमकीन है, ना डालो तो नमकीन नहीं है, वाज़े। इसका मतलब यह है कि नमकीनी इसकी अपनी जात में शामिल नहीं है, और नमकीन होने की सलाहियत रखता है ये खाना। इसका मतलब यह है कि मुमकिन है कि खाना नमकीन हो, मुमकिन है खाना नमकीन ना हो। दुरुस्त है? ये इम्कान की ताबीर जो हम लेकर आते हैं वो भी इसी तरीके से आई है। बस इम्कान फलसफे में किसे कहते हैं? इम्कान ऐसी जात कि जो अपने अंदर किसी भी सिफत हुक्म या किसी भी खसूसियत को अपने अंदर ना रखती हो, लेकिन रखने की सलाहियत जरूर होती है, उसको कहते हैं मुमकिन। रुस है? जैसे सादा मिसालें दी हैं, कपड़े में गीला होने की खसूसियत है, गीला होने की सलाहियत है, लेकिन जात में गीलापन नहीं है, क्योंकि अगर जात में गीलापन होता तो कपड़ा कभी खुश्क ना होता। बस जो भी मुमकिनुल वजूद कहलाता है, जो भी मुमकिन कहलाता है, ये बात इस चीज की अलामत है कि वो अपनी जात में उस सिफत को नहीं रखता। दुरुस्त है? मतलब क्लियर है यहां तक? ये तो था एक सादा मिसाल आपको दी। अब हम देखते हैं कायनात के ऊपर कि कायनात पर, कायनात को हम मुमकिनुल वजूद कहें या वाजिबुल वजूद कहें, बल्कि मैं वाजिब को भी थोड़ा सा खोल दूं ताकि आके मतलब वाजिब हो जाए। बस मुमकिन क्या हुआ कि जिसकी अपनी कोई चीज ना हो। वो चीज क्या है? जो भी रखता है गैर से लेता है, अपनी जात ही नहीं है उसकी, उसकी जात में शामिल नहीं होती, उसको कहते हैं मुमकिन। और वाजिब उसको कहते हैं, वाजिबुल वजूद, कि जिसकी हर चीज अपनी जाती होती है, वो किसी गैर से नहीं लेता। जैसे नमक के बारे में कहा था, ये उर्फी मिसाल है कि नमक की नमकीनी उसकी अपनी जात है, इसी वजह से कहते हैं कि नमकीनी जातियात हैं नमक की, आप नमक से नमकीनी को कभी जुदा नहीं कर सकते, मुहाल है। रुस है? बस जो अपनी जात में वो चीज रखता हो, उसकी जाती हो, किसी गैर से उसने ना ली हो, उसको कहते हैं वाजिबुल वजूद, उसको कहते हैं वाजिब, यानी वाजिबुल वजूद नहीं बल्कि वाजिब कहते हैं कि नमक जो है उसका, उसके लिए वाजिब है, जाती है चूंकि उसका। ये मैं उर्फी मिसालों के साथ आगे चल रहा हूं। बस वाजिब उसको कहते हैं कि जिसकी हर चीज अपनी हो, मुमकिन उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई भी चीज अपनी ना हो बल्कि गैर ने उसको दी हो, इसको कहते हैं मुमकिन। अब हम आकर देखते हैं कायनात के बारे में। कि कायनात जो है आया, ये जो वजूद रखती है ये वजूद उसका अपना था। अगर कायनात का वजूद अपना होता तो कभी कायनात मादूम ना होती। आपकी साइंस बता रही है, आज की फिजिक्स बता रही है कि इस जमीन की उम्र जो है कितने साल है, 13.7 मिलियन या बिलियन साल बनते हैं, 13.7, अब मैं थोड़ा भूल रहा हूं उसमें, या मिलियन कहा गया या बिलियन कहा गया मेरे जहन में नहीं है, बिलियन है, अब बारह देख लीजिएगा दोबारा उसको, मेरे जहन से निकल गया अभी, वाइला ये जहन में है मेरे कि 13 जो है वो 7 कहा गया है, यानी 13 से अबव है इस कायनात की, इस कुर्रा जमीन की मसलन मुमकिन है, थोड़ी हो लेकिन पूरा जो वो कहते हैं कि कायनात की जो है वो उम्र बिलियंस है, दुरुस्त है। तो आपकी साइंस कह रही है कि कायनात वजूद अपनी इब्तिदा रखती है, इब्तिदा रखने का माना ये है कि ये वजूद उसका अपना जाती नहीं है। अगर वजूद इसका अपना नहीं है, इसका जाती नहीं है, फिर क्या है, वजूद में तो आ गई है ये, इसका मतलब यह है कि इसने वजूद फिर कहीं से लिया है, दुरुस्त है, क्योंकि खुद तो ये रखती नहीं थी, वजूद की मालिक ही नहीं थी ये कायनात मखलूकात, जब इसकी जात में ही वजूद शामिल नहीं है, लेकिन वजूद रखने की सलाहियत थी इसके अंदर, इसी वजह से तो वजूद में आई है। अगर इसके अंदर सलाहियत ही ना होती वजूद रखने की तो ये कभी भी वजूद में ना आती, दुरुस्त है। बस मालूम हुआ कि कायनात वजूद की निस्बत क्या है, मुमकिनुल वजूद है। जब कायनात वजूद की निस्बत मुमकिनुल वजूद है तो कायनात अपने जबाने हाल से यह कह रही है कि मैं मोहताज हूं इल्लत की, खुदा की, क्यों, क्योंकि मुमकिन हूं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना वजूद मेरा है ना वजूद की सिफात मेरी है, लेकिन मेरे अंदर कबूल करने की सलाहियत है, लिहाजा गैर की मोहताज हूं, बस चूंकि मैं मुमकिन हूं बस इल्लत की मोहताज हूं, तो ये इम्कान की सिफत कभी उसकी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर इल्लत उसको सब कुछ भी दे दे फिर भी उसका कुछ नहीं है, मतवाजे है, चूंकि वो वजूद किसी गैर का दिया हुआ है, उसका अपना तो नहीं है, उसकी जात में तो शामिल नहीं हो गया। जैसे आप खाने में नमक डाल देते हैं, खाना नमकीन तो हो जाता है, लेकिन आया उसकी जात में शामिल हो जाता है कि अगर आपने नमकीनी छीन ली तो खाना खाना नहीं रहेगा, ऐसा होता है नहीं, आप किसी भी टाइम जो है वो उसके खाने के अंदर से नमकीनी निकाल दें, खाना खाना रहता है, नमकीन नहीं निकल जाती है, बस इसका मतलब यह है कि खाना जो है वो नमक की निस्बत मुमकिनुल वजूद रहेगा जब तक खाना है, इसकी ये मुमकिनुल वजूद होने की सिफत खारिज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि नमकीनी उसकी जात का हिस्सा नहीं बनी है, क्योंकि नमक उसकी जात में शामिल नहीं है, जात का हिस्सा बनने का मतलब यह है कि जिस तरीके से पानी H2O से मिलकर बनता है, अगर आप इस H2O के फार्मूले में थोड़ी सी भी कमी कर दें तो पानी पानी नहीं रहता, इसी तरीके से क्या है, खाने के अंदर नमकीनी ऐसे नहीं होती है कि खाने को खाना इसलिए कहते हैं चूंकि नमक है इसके अंदर, नहीं, अगर नमक डाल भी दें, नमक निकाल दें तब भी वो खाना है, डाल दें तो तब भी वो खाना है, बस इस मुमकिनुल वजूद की सिफत इसकी हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वो नमक रखे तब भी मुमकिन है, चाहे वो नमक ना रखे तब भी मुमकिन है, यानी आप कहते हैं कि अगर नमक डाल दिया तो आप कहेंगे नमक की निस्बत मुमकिन है, क्योंकि अब नमक तो है इसके अंदर, लेकिन नमक की निस्बत मुमकिन है, ये वाजिब नहीं है, क्योंकि नमक इसकी जात का हिस्सा नहीं है, इसकी नमक इसकी जात को तश्कील नहीं दे रहा, जैसे H2O के अनासिर जो है वो पानी की जात को तश्कील दे रहे हैं, नमकीनी खाने की निस्बत इस तरीके से नहीं है। बस अगर नमक रखता भी होगा फिर भी वो नमक की निस्बत क्या होगा, मुमकिन उल वजूद होगा। लेकिन अगर नमक ना रखे तब भी मुमकिन है, क्यों, उसके अंदर सलाहियत मौजूद है नमक रखने की। बात वाजे हो गई है। बस ये वजूद जो, अब जब हम वजूद में बात करते हैं तो कायनात जितनी भी तमाम मखलूकात हैं सब के सब जो हैं वो वजूद की निस्बत मुमकिन उल वजूद हैं, मुमकिन है वो, क्योंकि वजूद उनका अपना नहीं है, जाती नहीं है उनका, क्योंकि अगर जाती होता तो वाजिबुल वजूद होते, हमेशा से होते, अदम उन पर कभी ना आता और उनसे वजूद का जुदा करना मुहाल होता, जैसा कि नमक से नमकीनी को जुदा करना मुहाल है कि नमक नमक रहे लेकिन नमकीनी ना रहे, उसको नमक नहीं कहते, वाजिबुल वजूद की अलामत है, दुरुस्त है। तो बस कायनात जितनी भी है, मखलूकात जितनी भी हैं, वो मुमकिन उल वजूद है, चाहे वो वजूद रखें या ना रखें, और ये मुमकिन उल वजूद होना उनका हमेशा बाकी रहेगा, और जब वो मुमकिन उल वजूद हैं इल्लत की मोहताज रहेंगे, क्योंकि मिला के एहतियाज में इल्लत जो है वो मुमकिन उल वजूद होना है। बात वाज़े, बस मुमकिन उल वजूद होने की वजह से इल्लत की तरफ मोहताज हैं और ये एहतियाज हमेशा रहेगी, बस इल्लत की एहतियाज भी क्या है, हमेशा रहेगी। वह खत्म हो गया है, इस मुमकिन उल वजूद को और खोलने की जरूरत है। मैं इसको मजीद और गहराई में लेकर जाना चाहता हूं, फिर इसको हिस्सी मिसालों के साथ बयान करूंगा कि इस कायनात का खुदा के साथ और इल्लत के साथ क्या राबता है, कैसे लम्हा ब लम्हा मखलूकात जो है वो खालिक की मोहताज हैं, ना कि अपनी ईजाद में, बल्कि लम्हा ब लम्हा, अगर एक लम्हे के लिए भी खुदा अपनी तवज्जो इन मखलूकात से हटा दे तो ये मखलूकात तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसको थोड़ा खोलकर हिस्सी मिसालें भी दूंगा कि हमारी जिंदगी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहां पर हमारी मखलूक लम्हा ब लम्हा हमारी मोहताज है हमारी मखलूक, लेकिन लम्हा ब लम्हा हमारी मोहताज है, और वहीं से हम मिसाल को लेते हुए खुदा और मखलूक के दरमियान राबते को समझने की कोशिश करेंगे आगे, और यह मतलब समझ में आ जाएगा कि कायनात खुदा की मोहताज है इब्तिदा से लेकर अपनी इंतहा तक, ना कि यह कि अपनी इब्तिदा में मोहताज है लेकिन उसके बाद खुदा की जरूरत नहीं है, कि इंशाल्लाह इसको बाद में खोलते हैं। चाह रहा था कि यह बहस आज खत्म हो जाती, लेकिन मतलब जो है वो आम फहम बनाने के लिए बार बार तकरार करना और फिर उसकी मिसालें लेकर आना ज़रूरी था, क्योंकि फ़लसफ़ी बहसें बाज़ औक़ात जो हैं वो इस्तलाहात में अगर बात की जाए तो समझ में नहीं आती हैं आगे। तो इंशाल्लाह कल इसको जो है वो ख़त्म कर देंगे और इस आखिरी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।